देखते हैं तफसीर सूरत आले इमरान।
फकैफा, मगर ये तो सोचो क्या होगा, क्या होगा कब? इदा जमाना हुम लियौमिल्ला रैबा फी, जहन्नुम की तो बाद की बात है ना। सोचो किस कैसा होगा जब जमा करेंगे हम उनको एक दिन के लिए जिसमें कोई शक नहीं। ला रही वफी, इसमें शक है ही नहीं, कंफर्म्ड है। तुम्हारा दुनिया में जो भी कोई ट्रांजैक्शन करते हो, मामलात करते हो, शादियां ब्याह की डेट्स फिक्स करते हो, किसी भी बिजनेस की डेट फिक्स करते हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट को करते हो, इसमें चांस है कि होता है नहीं होता। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें कोई शक नहीं है, और वो है कयामत का दिन जिस दिन अल्लाह ने जमा करना। फकैफा जो लफ्ज है ना, ये इतने इसके अंदर कयामत छुपी हुई है, इतना खौफजदा करने वाला ना। बनेगा क्या तुम्हारा, होगा क्या तुम्हारा, ये तो बताओ कब? जब हम जमा करेंगे उस दिन जिसने आके रहना। ये ना समझना कि हो सकता ना आए, हो सकता है टल जाए, क्या पता हो ही ना, क्या पता नहीं। ला रही बाफी, और उस दिन होगा क्या? वो फियत कुल्लू नफ्से, हर नफ्स को पूरा पूरा दे दिया जाएगा। क्या मां का सबत, जो उसने कमाई की, जो उसने खुद अपने हाथों से कमाई की, वो ही दी जाएगा, दिया जाएगा, उसी का सिला दिया जाएगा। वहुम ला युदलामून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। जुल्म क्या हो सकता है? जुल्म ये हो सकता है कि किसी ने नेकी की हो और वो उस नेकी का बदला ना दिया जाए, और या किसी ने बुराई की हो और उस बुराई को बढ़ा के दे दिया जाए। नहीं, जुल्म नहीं होगा, अल्लाह के यहां जुल्म नहीं होता। जितना किया उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा किसी के खाते में जैसे नहीं आते। ये पुलिस वाले जब किसी को पकड़ लेते हैं तो वो एक के ऊपर सारे ही क्राइम्स डाल देते हैं। अरे एक चीज पे पकड़ा और जो इधर उधर के सारे थे ना मसले, वो भी उसके ऊपर ही डाल दिए, उसके सर थोप दिए। ऐसा अल्लाह के यहां नहीं होना, आप पकड़ ही लिया तो अब चलो इधर उधर के भी सब इसी से निकलवा। नहीं, हम ला युज़लम, वो नहीं जुल्म किए जाएंगे, और वो उनको वो ही मिलेगा जो उन्होंने किया। लेकिन असल में बात यह है कि इंसान अच्छी तरह जानता है उसने किया क्या। मसला है ही ये कि अगर वो इंसान को मिलने लगा जो उसने कमाई की है ना, तो उसको खुद पता है कि मेरी कमाई में क्या है। हर इंसान अच्छी तरह जानता है वो चाहे किसी को भी धोखा दे, यही तो प्रॉब्लम है। अगर कमाई किसी की बहुत अच्छी है, जबरदस्त है, तो फिर तो जाहिर है वो तो खुश ही होगा। लेकिन जिनको पता है कि उनकी कमाई में कुछ है ही नहीं, वो सोचे फकैफा इदा जमाना, क्या होगा जब हम उनको जमा करेंगे, कैसा होगा वो दिन। कितनी खौफनाक बात है, जरा इमेजिन तो करके देखें, उस माहौल को मैं खुद को खड़ा करके देखें कि हर शख्स का हिसाब हो रहा है, और पूरा पूरा जितना जो जो उसने दिया, कहीं किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। ज्यादती का नहीं डर होगा वहां पे कि मुझसे ज्यादती हो जाएगी, ये ना हो कि भाई दूसरों के भी मेरे से ही पूछे जाए। यहाँ पे दुनिया में हो सकता है ना, इंसान कहता है कि पुलिस पकड़ के ले जाए, तो उसके बाद क्या पता भाई क्या क्या मेरे ऊपर डाल दें, क्या पता मुझे किस चीज में धर लें, क्या पता इनको मेरे ऊपर कौन से इल्जामात लगा दें, ये हो सकता है। लेकिन वहां पे इस चीज का नहीं होगा कि मेरे ऊपर कोई ज्यादती होगी। हाँ, डर किस चीज का होगा कि मेरे पास है ही कुछ नहीं, मैं तो लाया कुछ नहीं हूं। तो जब इंसान ये सोचता है ना, एक झुरझुरी सी आ जाती है सोच के भी, ये धमकी है कि खुद को वहां पे उस माहौल में ले जाके देखो कैसा लग रहा है अब तुम्हें, कैसा महसूस हो रहा है। अल्लाह अकबर। कुल कह दीजिए, अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्क, कह दीजिए ए अल्लाह, ए मालिक बादशाहत के, तू तिल मुल्क, तू देता है बादशाहत किसको, किसको देता तू बादशाह? जिसके वोट ज्यादा होते हैं, जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, जिसके फैन ज्यादा होते हैं, जिसका पैसा ज्यादा होता है, या आजकल जिसको अमेरिका बना देता है वो उसकी हुकूमत आ जाती है, यही होता है ना हमारे, हम यही कहते हैं। नहीं, मन तशाओ, जिसको तू चाहता है। वतंजुल मुल्क मिम्मन तशाओ, और तू खींच लेता है, छीन लेता है मुल्क जिससे, किससे, जिससे लोग नाराज हो जाते हैं, जो लुट जाता है, जिसके खिलाफ फलां ने साजिश कर दी, फलां साजिश थे इसलिए उसकी बात हाथ लुट गई, छिन गई, नहीं मैं मंतशा, उनकी साजिशें भी इसलिए चली के तूने चाहा कि इससे बादशाहत छीन ली जाए। ये इस आयत का पहले शान नजूल जरा सुन ले। रिवायत में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया और आपने अपनी उम्मत से रोम और फारस की सल्तनतों का वादा किया, तो यहूदी और मुनाफिकों ने कहा, कहाँ रोम और फारस के मुल्क और कहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत बईद की बात है। और एक और रिवायत में आता है, ये इमाम राजी ने लिखी अपनी तफसीर में, और दूसरी रिवायत आती है कि जब गजवा आजाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के निशान लगाए और हर 10 आदमियों को 40 हाथ खंदक खोदने का हुक्म दिया, तो खंदक खोदते हुए एक ऐसी चट्टान आ गई जो किसी कुदाल और फावड़े से टूटती नहीं थी। तब सहाबा ने हजरत सलमान फारसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और उन्होंने आकर आपको बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान के हाथ से कुदाल लेकर चट्टान पर एक जरब लगाई तो आपकी जरब से चिंगारियां उड़ी और अंधेरी रात में बिजली की तरह रोशनी पैदा हुई। आपने नारा तकबीर बुलंद किया, मुसलमानों ने भी बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रोशनी में मुझे हीरा के मोहल्लात नजर आ रहे। फिर आपने दूसरी जरब लगाई तो फरमाया, इस रोशनी में मुझे रोम के मोहल्लात नजर आ रहे। रोम उस वक्त सुपर पावर थी, तो रोम के मोहल्लात नजर आने मीन्स के हम उनके ऊपर कब्जा कर लेंगे, फतह कर लेंगे उनको। फिर तीसरी जरब लगाई तो इस रोशनी में मुझे सना के मोहल्लात नजर आ रहे हैं, और मुझे जिब्राइल अलैहि सलाम ने आके खबर दी है कि मेरी उम्मत इन तमाम मुल्कों पर काबिज और गालिब होगी, सो तुम्हें खुशखबरी हो। यह सुन के मुनाफिकीन ने कहा, तुमको अपने नबी पे हैरत नहीं होती, वो तो तुमसे झूठे वादे करता, वो तुम्हें ये कहता है कि मदीना से हीरा और मदाइन कसरा, यानी कसरा भी ईरान के जो वो भी सुपर पावर थी, तो मदाइने किसरा के मोहल्लात देख रहा है और वो खंदकों से और वो मुल्क तुम्हारे लिए फतह होंगे, हालांकि तुम मारे खौफ के खंदके खोद रहे हो और तुम में इतनी ताकत नहीं है कि इन खंदकों से बाहर निकल के अपने दुश्मनों का मुकाबला कर लो। तो तब ये आयत नाजिल हुई कि ए नबी आप कह दें ये बात, अल्लाह है जिसको चाहे मुल्क दे बादशाहत, अल्लाह जिसे चाहे छीन ले। यानी तो वो उस वक्त सोच रहे थे ना, इन मुसलमानों का हाल क्या है, जरा इनकी हालत तो देखो, और कहने को क्या कह रहे हैं कि सुपर पावर्स का ये मुकाबला करके और उनको कॉन्कर करेंगे, तो ये कहाँ की बातें कर रहे हैं, हालत इनकी देखो अभी खौफ से क्या हो रही है। यानी उन्होंने एक मजाक उड़ाया, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तस्दीक की, और अल्लाह ताला ने फरमा दिया, मालिकल मुल्क कौन है, बादशाहत का मालिक कौन है, ए बादशाहत के मालिक तू बादशाहत देता है जिसको तू चाहता है, ए अल्लाह तू है बादशाहत का मालिक, कोई और नहीं है। ये सच जो सारी हमारी बातें ना, ये गलत है कि कोई और है जिसके हाथ में बादशाहत है, नहीं अल्लाह, हाँ सबब जरूर अल्लाह ताला बनाता है मगर मालिक वही है, फैसले उसके हैं। अब वो पता है ये आयत ऐसी है जिसमें भी कहा गया इब्ने कसीर में है कि इसमें इसमें आजम है, तो इसमें आजम से आपको पता है ना कि जो भी दुआ की जाए वो कबूल होती है, तो इस लिहाज से इस आयत के अंदर बहुत अजीम आयत है ये। और इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी मिल्कियत, अपनी इख्तियारात की बात की है कि इख्तियार किसके हाथ में, अथॉरिटी किसके हाथ में, और वो मिल्कियत रखता है, वो मालिक है। इसके लिए चार दलायल दिए गए कि तूती वो देता है और खींचता है वो ही, और इज्जत भी देने वाला और जिल्लत भी देने वाला वो। तो कुल ए नबी कह दीजिए अल्लाहुम्मा, कितनी दफा जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे अल्लाहुम्मा। आप दुआएं देख लें नबी अलैहिस्सलाम की, तो आप देखेंगे जो मसनून दुआएं हैं ना, उनमें अल्लाहुम्मा से ज्यादा शुरू होता है, ए अल्लाह, और اور ہو سکتا ہے اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہو، یہ بھی کہا گیا. جو قرآنی دعائیں ہیں آپ دیکھیں گے زیادہ تر ربنا سے شروع ہوتی ہیں، آپ اپنی بکس میں اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں گے اللہم بکا سبحانا بکا امسینا، اللہم ما اصبح بی من نعمتین، اللہم انی اسألک العافیت، اللہم انی اصبحت اشیدک، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم انت ربی. مطلب جتنی یہ ساری دعائیں ہم پڑھتے ہیں نا صبح شام کی دعاؤں میں بھی، آپ دیکھ لیں اللہم سے سٹارٹ ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ساری زندگی اللہم کرتے ہی گزری ہے. تو اللہم، اے اللہ، یہ ایک دعا بھی ہے ایک ڈکلیریشن بھی ہے. مالک الملک، ایک ایمان ہے یہ، اے بادشاہت کے مالک تو دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے بادشاہت. اللہ اکبر، لوگ بادشاہتوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، کتنے دھوکے، کتنے جھوٹ، قتل و غارت. آپ نے سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ بعض بیٹوں نے باپوں کو قتل کر دیا بادشاہ بننے کے لیے، یعنی باپ بادشاہ تھا، راستے سے ہٹاؤ تاکہ میری باری آئے. وہ خود قابض ہونے کے لیے انہوں نے باپ کو ہٹا دیا راستے سے. تو لوگ کیا کیا نہیں کرتے ظلم بادشاہت لینے کے لیے، لیکن بادشاہت یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے، اور جس سے چاہے چھین لے، یہ بھی اسی کا فیصلہ ہے. بادشاہت آ گئی، حکومت آ گئی، حکومت بھی اسی میں اللہ کا فیصلہ ہے. حکومت جس کو چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے. آپ دیکھتے ہیں حکومتیں بھی کیسے ان کے تختے الٹ جاتے ہیں، کیسے بادشاہوں کے تختے الٹ گئے، جب چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ انسانوں کا اپنا بس نہیں ہے. کوئی سمجھے جی میں بڑا عقل مند ہوں، میری بڑی چلتی ہے اس لیے مجھے ملی ہے، نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. مالک الملک جس کو چاہے دے. پھر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور عزت بھی وہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے کسی کو ذلیل کر دیتا ہے، عزتیں اس سے لے لیتا ہے. عزت اور ذلت کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ ہم پتہ کیا سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں عزت کیسے ملے گی. آج کا کیا کانسیپٹ ہے، عزت کیسے ملتی ہے؟ آج عام بندے کو پوچھے، جناب آپ اپنی ذرا یہ تھوڑی دیر کے قرآن کو ایک طرف رکھ کے سوچیں، ذرا اپنے جو روز مرہ زندگی ہے اس سے سوچیں، عزتیں کیسے ملتی ہیں؟ مال ہوگا تو عزت ملے گی، جناب پیسے والے کو سلام ہے، بڑے گھر ہوگا تو عزت ملے گی، فلاں ہوگا تو عزت ملے گی. اور پھر ایک اور عزت کا معیار ہے، جتنا ویسٹرنائز ہوں گے نا آپ اتنی عزت ملے گی، جتنے آپ کم سے کم کپڑے پہنیں گے اتنی عزت ملے گی، جتنا آپ ویسٹرن ایٹیکیٹس کو فالو کریں گے اتنی عزت ملے گی، اور جتنا آپ ہیلو ہائی کریں گے، یہ سلام سلوم ہی نہیں، کیا عزت ملنی ہے، سلام کرنے، یہ کرنے، یہ نہیں، ان میں بہت بیکورڈ باتیں ہیں. ہائے، ہیلو، گڈ مارننگ، یہ ہوتی ہیں، پھر اس طرح عزت ملتی ہے، بھیا پتا چلے کہ آپ کوئی چیز ہے. یہ ہمارے عزت کے پیمانے ہیں. کیا ایسا نہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں ان سے عزتیں ملتی ہیں. اللہ اکبر، جتنی ہم دوسروں کی کاپی کریں گے نا اتنی عزت ملے گی. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، اے یبتغون عندہم العزت، کیا تم ان کے پاس بھاگتے ہو، جاتے ہو عزتوں کی تلاش میں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے. عزت کا جو خزانہ ہے نا، اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، جس کو چاہے اس میں سے عزت دے. اب کیا اس چیز کو، اب جب مثلا میں آپ کو کہوں کہ نہیں جی پیسوں سے عزت ملتی ہے، نہیں جی گھروں سے عزت ملتی، آپ اس کو نگیٹ کیسے کریں گے؟ دلیل لائیں، دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے نا. نہیں میں کہتی ہوں نہیں آپ گھروں سے ہی عزتیں ملتی ہیں. دیکھیں عہدہ ہوگا تو عزت ہوگی، پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی. لیکن یہ ایسے نہیں آپ کہہ سکتی کہ یہ نہیں کچھ بھی نہیں، تو آپ برقعے پہن کے چل پڑیں اور آپ کہیں نہیں جی میں بڑی عزت والی ہوں، یہ کیا عزتیں ہیں؟ आपका क्या मकाम है? नहीं कुछ नहीं है। नहीं उसको अब इसको प्रूव करें ना, आप कैसे प्रूव करेंगे कि नहीं ये गलत है? प्रूफ चाहते हैं? चलें फिर देखते हैं प्रूफ के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखते हैं, घर से निकाले गए, वतन से निकाले गए, और उससे पहले क्या था? आग में डाल दिए गए। सारी कौम एक तरफ है और वो अकेले हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या ये तो कोई इज्जत नहीं है? इज्जत तो नहीं हुई है, ये तो इज्जत छिन गई है। वतन से निकाल दिए गए, ना कोई माल है, ना दौलत है, ना सर पे छत नहीं है। माल दौलत की तो बात की बात है, बिल्कुल कोई कोई सामान नहीं, कोई सवारियां नहीं, कोई कोई और ऐसे जत्थे नहीं, अकेले तने तनहा, बीवी साथ और भतीजा साथ। चलो कोई खानदान ही हो साथ, कुछ भी नहीं है। तो यूं लगता है कि जैसे इज्जत नहीं मिली। हालांकि अगर देखना है तो देखें, वो तो वो हैं जो इज्जतों के ऐसे ताज पहनाए गए कि आज भी लोग जब उनका नाम लेते हैं तो इज्जत के साथ लेते हैं। आज भी लोग अपने बच्चों का नाम उनके नाम पे रखते हैं, आज भी उनके नाम लेते हैं तो दिल मोहब्बतों से भर जाते हैं, आंखें छलकने लगती हैं। आज भी उनका नाम लेते हैं तो इंसान जज्बाती हो जाता है। ये वो है कि फिर जिनको अल्लाह ने इमाम बना दिया दुनिया का, इंसानियत का, उनको ये बनाया कि पूरी दुनिया के लिए उसवा बना दिया, पूरी दुनिया के लिए आपके लिए मिसाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। उनको बेटे की बशारत दी, पोते की बशारत दी, और वो ऐसे नहीं, चलो बेटे पोते तो लोगों के पास होते ही हैं तो कोई नहीं, वो नहीं, बेटे पोता वो जो नबी होंगे, और आज के बाद नबुवत आपकी औलाद में से बाहर नहीं निकलनी। जो नबी आएगा वो आपकी औलाद में से ही होगा, उनसे बाहर कोई आया ही नहीं नबी, चाहे नबी अलैहि सलातो वस्सलाम हो, चाहे ईसा अलैहि सलाम हो, चाहे मूसा अलैहि सलाम हो, दाऊद अलैहि सलाम हो, सुलेमान अलैहि सलाम हो, कितने ही नबी आप देख रहे, सब इनकी औलाद में से ही है। सुभान अल्लाह, ये होती है इज्जतें, ये है इज्जत। फिर देखें यूसुफ अलैहि सलाम की तरफ देखें, कुएं में पड़े में क्या है, कहां से मिस्र के बाजार में बिक रहे हैं, कहां है घर में गुलाम की हैसियत से हैं, और फिर कहां बादशाहत मिल गई है कि वो ही जो सारे मुखालिफ थे वो आके आपके सामने झुक गए, इज्जतें मिली ना। फिर आप देखें यहां से पता चलता है इज्जतों के फैसले अल्लाह करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ के जा रहे हैं, लगता है ऐसे कि नहीं ये तो इज्जत नहीं मिली, ये तो कुछ और हो गया, नहीं इज्जतों के दरवाजे खुल रहे हैं। 8 साल के बाद उसी जगह को फतह कर लिया। और दूसरी तरफ भी देखें, सरदार है, बहुत बड़ा सरदार है, उसकी से है अबुल हकम नाम है, और गो के हम आप उस बल्कि उसी जमाने में अबू जहल कहलाया, मगर नाम तो उसने अपना नाम तो नहीं अबू जहल रखा था ना, जहालत का बाप थोड़ी उसने अपना नाम रखा था, उसने तो अपना नाम अबुल हकम रखा था, हिकमतों का बाप, इज्जतों वाला बना फिरता है। तो क्या दो लड़कों ने कत्ल किया और उसको उठा के बदर के कुएं में डाल दिया गया, वहीं पे उसकी लाश पड़ी रही। हाँ आज कोई अपने बच्चे का नाम अबू जहल रखना पसंद करता? सो इज्जत के फैसले दुनियावी असबाब से तो नहीं होते, इज्जत तो अल्लाह देता है। फिर अबू लहब को देखे, देखे एक ऐसे आदमी को जो भी बहुत बड़ा सरदार था, और इतना बड़ा सरदार था लोगों के दरमियान खड़ा होकर कहने लगा ए मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाए, नाउज़ बिल्ला, तो जवाब आया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, और कयामत तक लोग इसी तरह कहते रहेंगे इसके हाथ टूटे और तू तबाह बर्बाद हो। फिरौन को देखे, अना रब्बु को मुला आला कहता था, अटो बच्चों के शोर थे उसके आगे पीछे, कौन मिजाल रखता था कि उसके आगे कोई चूं भी करे, जो वो चाहता था हुक्म लगाता था, कितनी बड़ी बात थी ना। तो इज्जत मिल गई क्या उसको? जब डूब रहा था तो कहने लगा हाय मुझे अब बचा लो, मैं नहीं मान लेकर आया मूसा के रास्ते, तो क्या फरमाया आल आन, अब ईमान लाया, और आज देखो उसकी मम्मी को दुनिया जहान में घुमाया जाता है, इब्रत के निशान के तौर पे लोग देखते हैं, इब्रत के लिए। और हाल उसका क्या है कि दिन और रात वो आपके ऊपर पेश किया जाता है। जी पता चला इज्जतें और जिल्लतें क्या होती हैं। कारून को देख लें, पैसा तो बहुत था उसके पास, इतना पैसा था कि जब वो अपनी सवारियों के साथ और अपनी शानो शौकत के साथ निकलता था तो लोग उंगलियां दबा लेते थे मुंह में, कहते थे आए कितने नसीबे वाला है, कितनी इज्जतों वाला है, काश हमें भी ऐसा मिल गया। जब धंस गया जमीन में लोगों के सामने तो लोगों ने शुक्र अदा किया कि आए शुक्र है कि हमें, हम नहीं इस तरह इसकी जगह पे। जी हाँ ये होती हैं फिर इज्जतें और जिल्लतें। भी यदि कल खैर, तेरे हाथ में ही खैर है, तेरे ही हाथ में खैर है, यानी कोई कहीं और से नहीं खैर मिल सकती, खैर लेनी है तो सिर्फ तुझसे मिल सकती है अल्लाह। और ये भी माना हो गया कि तेरे हाथ में खैर ही खैर है, तू जो कुछ करता है उसमें खैर है, चाहे अल्लाह मुझे शर नजर भी आए, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो इसमें भी मेरे लिए खैर, पता नहीं तूने कौन सी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। असहाबे कहफ देख लें, कश्ती उस सूरह कहफ में देख लें, वो कश्ती वालों का किस्सा जो है, एक तख्ता टूटा है लग रहा है कि शर है, उसमें खैर थी ना, तो तेरे हाथ में खैर है, यानी जो मुझे शर नजर भी आता उसमें भी खैर है, उसमें भी खैर है। असान तकराउ शही अम वहुआ खैरुल लकुम, हो सकता तुम्हें कोई चीज ना पसंद आ रही हो लेकिन उसी में तुम्हारे लिए खैर हो, जो मिजाजे यार में आए कि जो तू मेरे लिए फैसला करेगा उसमें खैर ही होगी। हम मगर शॉर्ट साइटेड हैं, हमें दूर नजर नहीं आता, इसलिए हमें नहीं पता चलता कि इसमें क्या खैर छुपी हुई। यूसुफ अलैहि सलाम को कुएं में पड़ा हुआ कोई देख लेता तो कहता हाय ये तो बड़ा शर है, लेकिन उसमें खैर थी ना। पूरी सूरह यूसुफ बताती है कि कैसे शर में से खैर अल्लाह निकालता है, कैसे तुम्हें कोई चीज लग रही थी शर लेकिन उसमें खैर होती। बियदी कल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, तू हर चीज पर कादिर, हर चीज पे तू कादिर है। और हम अगर आपसे सवाल किया जाए अल्लाह किस किस चीज पे कादिर है, तो आप लिखने लगेंगी ना, आपकी कॉपियां खत्म हो जाएंगी, आपके जहन में सोचे खत्म हो जाएंगी, आपके हाथ दुख जाएंगे, इंक खत्म हो जाएगी, आप नहीं लिख सकेंगे, आता ही नहीं कर सकते, आप एनकम्पस ही नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला किस किस चीज पे कादिर है। तो इसलिए कह दिया गया अला कुल्ली शैइन, क्योंकि अला कुल्ली शैइन अब ये इतना बियॉन्ड है हमारी सोच से, अला कुल्ली शहीन में कहां कहां तक चीजें हो सकती हैं हम तो सोच ही नहीं सकते। अगर एक चीज का कहा जाता ना कि अल्लाह जिंदगी मौत पे कादिर है, अल्लाह इज्जत जिल्लत पे कादिर है, अल्लाह रिस्क देने पे कादिर है, तो सिर्फ लिमिटेड चीजें होती, जब कह दिया गया अला कुल्ली शहीन तो हर चीज ही आ गई इसके अंदर, हर चीज आ गई जो कि आप इम्पॉसिबल समझते हैं अल्लाह उस पर भी कादिर। ये सोचें कि ये कितना ही बड़ी बात है। और ये बात सुने, ये ना ये कॉपियों में लिखना और ये पढ़ना और ये वो बातें नहीं है, ये पता है ये ईमान है, ये जो आयत है ना ये ईमान है, फुल ऑफ ईमान है। अब जब कोई ईमान वाली बात है तो इसका तो फिर दिल के अंदर मजबूत होना जरूरी है, कॉपियां भर भर के रखने से इसका नहीं फायदा होगा, इस ईमान को लाना, और ये बड़ा ही मेहनत तलब काम है, इसमें मेहनत लगती है, ये बस बातें करने से नहीं हो जाता कि हमने आयत पढ़ ली तो हो जाएगा इस तरह, हमें आ गया, हमें समझ आ गई, हमें समझ आ गई, लेकिन उसके बाद आप बताएं कि जिस वक्त हम देखते हैं दुनिया में हालात, हम देखते हैं कि हमें नहीं कोई चीज मिली, कोई बादशाह, कोई ओहदा, कोई हुकूमत मुझे नहीं मिली, फलां को मिल गई है, तो क्या होता है दिल के अंदर, कुछ होता है? तब कहां जाता है ये ईमान कि अल्लाह है जो मुल्क देने वाला है, अल्लाह है जो छीनने वाला है। जब ये चीज का ईमान आ जाता है ना, तो फिर ये गम नहीं लगते उसको, क्यों मिल गया, हाय उनके पास क्यों इतना है, मुझे क्यों नहीं मिला, ये नहीं होता। फिर हसद और कीने खत्म हो जाते हैं। फिर आगे देखें, तूली जो लैला फिर नहार, वो है जो दाखिल करता है रात को दिन में, वह तूली जो नहारा फिर लैल, और वो ही है जो दिन को रात में दाखिल करता है। दिन और रात इतनी बड़ी तब्दीली है जो इस कायनात में आती है, उसका फैसला वो करने वाला है। ये गौर और फिक्र करने वाली आयतें हैं। ये आजकल देखें, दिन लंबे रातें छोटी, अब हम में से कोई चाहे नहीं, मैंने दिन को छोटा करना, रात को लंबा करना, नहीं इख्तियार है। इख्तियार इसका मतलब किसी और के पास है ना, कोई और है जो ये फैसले करने वाला है, जो दाखिल करता है दिन को रात में और रात को दिन में। कोई और है हस्ती जिसके पास इतनी पावर है कि वो इतनी बड़ी चेंज लेके आता है, इतनी बड़ी चेंज कि देखे पूरे आसमान पे वो चेंज आ गई, वरना स्याह काली चीज को सफेद करना कितना मुश्किल है। सफेद को शायद स्याह करना आप कहें इतना मुश्किल नहीं, लेकिन स्याह काली चीज, स्याह अंधेरी रात, और आप दोपहर का वक्त देखें कितना रोशन है। और कैसे अल्लाह ताला उसी आसमान पे ये तब्दीली ले आता है, और गैर महसूस तरीके से हर रोज ये तब्दीली हो रही है, हर रोज दिन आ रहा है रात आ रही है, दिन हाथ से निकल जाता है रात आ जाती है, हाथ रात हाथ से निकल जाती है दिन आ जाता है। पकड़ सकते हो इसको, होल्ड करो ना इसको, मेरा दिल नहीं चाहता ये जाए, मेरा दिल नहीं चाहता आज का दिन ना खत्म, बड़ा मेरा खुशी का दिन है ये खत्म ना, कर सकते हो उसको, पकड़ सकते हो, होल्ड कर सकते हो। और ये हाय ये रात बड़ी मुश्किल है, ये जल्दी गुजर जाए, जल्दी गुजर जाए, जल्दी गुजार सकते हो, नहीं। तेज टाइम को तेज फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, नहीं। तो फिर किसी का जोर है ना, मान जाओ ना किसी और का जोर है। ये जो सारी इतनी बड़ी चेंज आ रही है ना, इतनी महसूस तरीके से ये चेंज बताती है, कोई हस्ती है मेरे पीछे जो कुदरत रखती है, जो हकीम है, जो हलीम है, जिसका बस है, जिसका जोर है, क्योंकि किसी बदलने वाले के बगैर कोई चीज बदलती नहीं है। फिर वतुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति वतुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, जिंदा से तू निकालता है जिंदा को मुर्दा से। जिंदा को मुर्दा से कैसे निकालता है अल्लाह ताला, आप देखिएगा बीज है, मुर्दा है ना, आप उसको जमीन में डालते हैं उसी से पौधा निकल आता है जो जिंदा है। आप अंडा देखते हैं, अंडा आप उसको खा भी लेते हैं अंडे को, लेकिन उसको रख छोड़े मुर्गी अपने परों के नीचे तो क्या है, उसी में से चूजा निकल रहा है। आप तोड़ के देखें, क्रैक करें अंडे में, क्या कोई जिंदगी नहीं नजर आती, लेकिन इसी मुर्दा से एक जिंदा पैदा हुआ ना, वो चूजा इतना खूबसूरत सा निकल के भागने लगा। जिंदा को अल्लाह ने मुर्दा से कैसे पैदा कर दिया, एक नुतफा क्या होता है, खुद अपने आप का बताएं ना। चले मैं आपसे ही पूछती हूँ, आप कहां से आए, कहां से आए आप, एक मुर्दा से ना, नुतफा मुर्दा ही था ना, उससे पैदा हुए, तो अल्लाह ने निकाला ना जिंदा को मुर्दा से। वा तो खरीजुल मय्यिता मिनल हय्य, और तू निकालता है मुर्दा को जिंदा से। देखिए मुर्गी अंडा देती है, मुर्गी जिंदा है और वो अंडा मुर्दा है, वो लाइफ नहीं है उसमें। आप देखते हैं कि एक इंसान अच्छा भला होता है और वो औरत जन्म देती है एक मुर्दा बच्चे को, एक इंसान जिंदा है उसको मौत आ जाती है। ये सारी चीजें बताती हैं कि कोई है हस्ती, कोई है इसके पीछे, देखो कोई है चला रहा। जिंदगी कहां से आई, अल्लाह कहता मुर्दे से निकाली मैंने, आप क्यों नहीं निकाल लेते, आप निकाल के दिखाए ना, आपकी भी तो साइंस बहुत तरक्की कर गई है, आप निकाले ना जरा, निकाल के दिखाए, किसी मुर्दा से जिंदा को निकाल के दिखाइए ना। यहां पे यकीन की जरूरत है, चारों तरफ आपके बीज उग रहे हैं, रोजाना मुर्दे से पौधे जिंदा जो है वो निकल रहे हैं, मुर्दा जमीन है उससे उग रही हैं चीजें, अंडे से बच्चे निकल रहे हैं, लाखों अंडों से सिर्फ मुर्गी के ही नहीं, मछलियों के बेशुमार अंडे हैं और चीजों के अंडे हैं, कितने उनसे बच्चे निकल रहे हैं। ये सब कारनामे रोज देखते हैं हम, फिर भी यकीन नहीं आता कि हर चीज पे वो कुदरत रखता है, हर चीज पे। किसी के पास बहुत पावर होगी तो ये कर सकता है ना, देखिए कुछ सोचे। आप लॉजिक से आपको बताया जा रहा है, ऐसे नहीं आपको अंधाधुंध ईमान का नहीं कहा जा रहा, लॉजिक है इसके पीछे कि तुम रोज देखते नहीं हो भाई, अपनी आंखों से देखते हो, फिर तुम्हें यकीन नहीं आता। बहुत पावरफुल है कोई जात जिसको तुम खुदा मानते हो ना, जो खुदा है ना, वो इतनी जबरदस्त कुदरत रखता है, तुम सारे ब्रेन्स मिल के भी ये काम नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। तो जिंदगी और मौत का भी इख्तियार उसके पास है, फिर क्यों नहीं उसको पहचानते। फिर तर्ज को मन तशाओ भी वही हिसाब, फिर पैदा करके वैसे ही छोड़ नहीं देता, रिस्क भी देता है। घर में चंद मेहमान आ जाए, फिक्र पड़ जाती है इनको क्या खिलाएं, अच्छा अगले टाइम क्या खिलाना है, उसे अगले टाइम क्या खिलाना है, वो पूरी कायनात चला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, सदियों सदियों से सबके पेट भर रहा है, कोई जानदार अपना रिस्क उठाए नहीं फिरता। आप नहीं देखे मछलियां अपना रिस्क लेके फिर रही, परिंदे अपने बैग में लेके फिर रहे हैं अपना रिस्क, अपना स्नैक लेके जा रहे हैं, चौपाए अपना रिस्क बैग में डाले रखे हैं, नहीं। फिर वो रिस्क भी देना, और रिस्क में सिर्फ खाना पीना नहीं आता, रिस्क में सब चीजें हैं, जो भी नेमते मिलेंगी, तमाम नेमते जिसको चाहे बेहिसाब बगैर हिसाब के। मजा रिस्क में क्या क्या आ गया, इसमें इंसान की जिस्मानी सेहत भी आ गई, जिस्मानी ताकत भी आ गई, जहनी ताकत भी आ गई, जिसको चाहे जितनी ज्यादा दे दे, खूबसूरती आ गई, माल आ गया, अखलाक आ गया, जिसको चाहे जितना भी नवाज दे, उसने किसी से पूछना नहीं है, उसने किसी से ओके नहीं लेना, किसी से मशवरा नहीं करना, मुझे मशवरा दो मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, इसको फलां को दूं कि नहीं दूं, ये नहीं करना उसने। और ये जो जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा, एक मिसाल ये भी उलमा ने दी है कि देखें मोमिन से काफिर और काफिर से मोमिन का पैदा होना, काफिर मां बाप होते हैं। कैसे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप, काफिर था, बुत परस्त, और उनसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे पैदा हुए, मुर्दा से जिंदा, और जिंदा से भी मुर्दा पैदा हो जाते हैं। नूह अलैहिस्सलाम है और बेटा कैसा है, ईमान ही ना लाके दिया। तो देखें यहां से हम इंसान समझे, यहां इन इन ये दो आयते ना बहुत इंपॉर्टेंट आयते हैं, और इनके पढ़ने में भी बड़ी खैर है। बाज रिवायात में आता है कि हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ऊपर कर्ज की शिकायत की थी, तो आपने फरमाया ये आयते पढ़ो, कुलिल्लाहुम्मा से लेके ये यहाँ तक भी वही हिसाब था, और फिर ये दुआ करो अर्रहमान दुनिया वल आखिरा वरहीमहुमा तुअति मन तशाउ मिनहुमा वतमनाउ मन तशाउ अरहमनी रहमतन तो गुनी नी बिहा अन रहमती मिन सिवाक अल्लाहुम्मा अगनी नी मिन अल फकर वक्दी अन्नी दैन, ए अल्लाह मेरे कर्ज को अदा कर दे। ये ऐसी दुआ, एक दूसरी रिवायत में आता है, ये जो दो आयते हैं ना, ये ऐसी दुआ है कि तुम पे अगर ओहद पहाड़ जितना कर्ज भी हो तो अल्लाह ताला इसकी अदायगी का तुम्हारे लिए इंतजाम फरमा देगा। रिज्क के लिए भी बहुत अच्छी, जिसके पास रिस्क की तंगी हो, जॉब्स के मसले हैं इसके, तो ये आयतें पढ़। तो अब क्या सीखा इन आयतों से, कि ईमान इससे नहीं पता चलेगा आपने नोट्स कितने अच्छे बनाए हैं और आपने कितना अच्छा इनको याद कर लिया, ये पता चलेगा ईमान कितना आपके अंदर इन आयात से आया है कि जब मौका आए तो आपका रिएक्शन क्या होता है। हाँ, ये तब पता चलेगा आप इज्जतें और जिल्लतों के मालिक किसको समझते हैं। आप किसी को देखते हैं कि किसी को अल्लाह ने ओहदा दिया है, या किसी से छीन लिया तो आपका क्या रवैया होता है? आप जिंदगी और मौत को कहां से आता हुआ देखते हैं? आप दिन और रात को कैसे देखते हैं? आप कैसे देखते हैं कि यहां पे फैसला किसका चल रहा है इस कायनात में, जिसको चाहे दे, जिसको जिससे चाहे ले? हाँ? तो जब इस पे यकीन नहीं ना होता फिर दिल बड़ा घबराता है। हाँ, फिर बड़े एतराज आते हैं, हाय क्यों, हाय मुझे क्यों नहीं, हाय उसको क्यों, हाय ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, उससे छीन क्यों गया, मुझसे छीन क्यों गया, उसको मिल क्यों गया। ये तभी होता है जब ये यकीन कमजोर होता है। तो यकीन ये लेकर आना है मिल्कियत अल्लाह की, अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्क, जो चाहे फैसला कर। देखिए, जब कोई मालिक होता है ना तो फिर उसकी उसकी मर्जी है ना, जो चाहे फैसला करे। क्या ख्याल है ना, किसका किसको राइट होता है कि वो फैसला करे? जो मालिक होता है। मसलन आप अपने मिसाल के तौर पे अपने घर के मालिक, अब आप जो मर्जी उस घर में करें। ये थोड़ी होगा कि कोई आपको कहे कि नहीं जी आपने ये क्यों किया, इसके अंदर ऐसी ये कलर क्यों इस्तेमाल किया, आपने यहां पे सोफा क्यों रखा। आप कहती मेरा घर है, जो मर्जी करो। तो टोटल मिल्कियत उसकी है, टोटल। इस दुनिया के अंदर किसी की भी टोटल मिल्कियत नहीं है। इवन आप मसलन घर के मालिक हैं या कोई बादशाह के मालिक है, फिर भी किसी से पूछना पड़ता है, फिर कोई कानून होता है, आप उसके मुताबिक फॉलो करते हैं चीजों को, तो टोटल फिर भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला के पास टोटल मुकम्मल मिल्कियत है। तो उसकी मिल्कियत डिफरेंट है, वरना तो आप कहेंगे मेरी भी तो मिल्कियत है। आपकी तो जुज्वी है और आर्जी है, टेम्परेरी है और पार्शल है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने घर में 10 मंजिलें बना लें। वो कहेंगे नहीं, आप ये आपकी जो टाउनशिप है उसका कानून नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। आपकी मिल्कियत गाड़ी है, लेकिन आप नहीं कर सकते कि गाड़ी को बगैर नंबर प्लेट के आप रोड पे ले आए। तो आपकी मिल्कियत है, लेकिन आपके पास पूरा इख्तियार नहीं है। अल्लाह के पास वो मिल्कियत है जिसमें टोटल इख्तियार है। तो टोटल अथॉरिटी है और उसी का फैसला है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? और ये बात सूरज चांद सितारे सबने समझ लिए, इंसान को नहीं समझ आते। उन्होंने समझ लिए इसलिए वो चल रहे हैं अल्लाह के फैसले को मान के। लेकिन इंसान जो है ना, वो पढ़ता तो है, कहता तो है कि हाँ मैंने मान लिया, इसको यकीन नहीं आता। तो जब ये यकीन आ जाएगा ना इस बात का, तो जिंदगी में चैन आ जाएगा। फिर मेरा कोई इख्तियार ही नहीं, अल्लाह मेरा क्या इख्तियार है, फिर तेरा इख्तियार है, तू मालिक है। हर बात खुद से पूछा करें, मेरा मालिक कौन है? क्या जवाब आता है अंदर से? ये नहीं कि हम यहां पे बैठे हुए कुरान क्लास में तो अब हमने कहना ही है कि अल्लाह ही मेरा मालिक है। असल बताएं कि मेरा मालिक कौन है। क्योंकि ये बात अगर दिल में नहीं उतरी हुई ना, तो बस फिर लफ्ज ही है, उससे आगे नहीं है। तो हम पहले फैसला करें कि मेरा मालिक है कौन। जब ये फैसला कर लेंगे ना, आगे बड़ी आसानी होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्योंकि जब ये फैसला कर लेंगे कि मेरा मालिक अल्लाह है, तो फिर मालिक अल्लाह है तो फिर फैसले तो अल्लाह के ही चलेंगे ना मेरे ऊपर, फिर इख्तियार उसी का चलेगा ना। फिर मेरा वक्त किसका है? मेरे मालिक का ही होगा ना। मेरी ये जिंदगी किसकी है? मेरी सलाहियतें किसकी हैं? मेरे पास इतने कपड़े हैं, जो माल है, जो नेमते हैं, जो सवारियां हैं, जो चीजें, वो तो फिर मालिक की हैं। मेरा क्या हुआ? फिर ये कहाँ लगानी है, किधर खर्च करनी है? माल, वक्त, ये किधर लगाना है? ये फैसला कौन करेगा? ये मालिक से पूछ के बताऊंगी, फिर ये आएगा ना। और अगर इसमें जरा भी डाउट है तो फिर क्या कहते हैं, लो मेरी जिंदगी, मेरा टाइम है, मेरा घर है, मेरी चीजें हैं, मेरा पैसा है, मैं जहां मर्जी खर्च करूं, कौन होगा जो मुझे बताएगा? फिर ये आता है। तो कहा मसला कहाँ पे है? मसला है उसमें जो अकीदा है, जो बेस है, वहां पे मालिक अल्लाह को नहीं बनाया। जुबान से कह देते हैं हाँ अल्लाह ही मेरा मालिक है, मगर अमलन किसी और को मालिक बनाया है, अपने आप को मालिक समझा है हर चीज का। अब इज्जत और जिल्लतों के फैसले की तरफ आए, उसमें भी क्या है? देखें, उसमें ये नहीं देखना कि ये जो है लोगों की नजरों में मैं कैसी हूं। उसमें भी क्या देखना है, अल्लाह की नजर में मैं इज्जत वाली हूं कि नहीं, इसकी फिक्र करनी है, क्योंकि जब सारी कौम एक तरफ खड़ी भी है और एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक तरफ है, तो मुझे बताएं वहां पे तो फिर आप तो यही देख के फैसला करेंगे, नहीं जी अगर इसकी लोगों में इज्जत नहीं तो ये क्या इज्जत हुई। हालांकि वही इज्जत है, क्योंकि वो अल्लाह के यहां इज्जत वाले हैं। तो मुझे फिक्र क्या होनी चाहिए, मेरे अल्लाह के यहां मेरी क्या इज्जत है। इसके बाद लोगों की मुझे परवाह नहीं है वो क्या कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने जब जाके काबा में इस्लाम की बात की थी, तो लोगों ने इतना पीटा था, इतना पीटा था कि ऐसे लग रहा था बेहोश हो गए थे, ऐसे लग रहा था अब मर गए, अब इन्होंने नहीं बचना। बेहोशी में उठा के उनके कबीले वाले उनको लेकर आए थे घर पे। तो क्या वो बेइज्जती थी? तो इज्जत और जिल्लत के मेयार को समझे। ठीक है, लोग हिजरत हबशा करके गए, तो उन्होंने अपनी बेइज्जती तो नहीं इसमें समझी कि हाय हमें घर बार छोड़ने पड़े, हम क्या लुटे पुटे रेफ्यूजीज बन के चले गए, ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती है। नजाशी के दरमियान में जाके उन्होंने ये नहीं कहा था कि हाय हमारे साथ क्या हो गया, हमारे तो घर बार छिन गए, हमारे तो ये हो गए। उन्होंने कहा हम तो जहालत के अंदर रहते थे, ये नबी आया और इन्होंने हमें राह दिखाई। तो हम फौरन दुखी हो जाते हैं ना जब हम यहां पे लोगों की नजरों में देखते हैं कि ये मुझे इज्जत वाले समझ रहे हैं कि नहीं। तो इज्जत लोगों की नजरों में नहीं देखो, इज्जत ये देखो कि रब की नजरों में मैं कैसी हूं। जी वहां से मुझे इज्जत मिलेगी इस पे या जिल्लत मिलेगी। और जो इंसान चाहे पूरी दुनिया के सामने बड़ा इज्जत वाला बना फिरता है लेकिन रब के यहां जलील है, जलील ही है। और ये कभी ना सोच के दुखी हूं इसने मुझे ये कह दिया है मैं तो जलील हो गई, नहीं। फिर तो पैगंबरों को कितनी लोगों ने सुनाई, उनको बुरा भला कितना कहा, तो फिर क्या हुआ, उनकी इज्जतों में कोई कमी नहीं आई। लोगों ने कितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहा, शायर कहा, जादूगर कहा। अगर आपको कोई जादूगर नहीं कह दे आपको अच्छा लगेगा? सोचिए अपने आप के ऊपर सोचिए कि ये तो बड़ी जादूगरनी है, कैसा लगता है। तो हमारी क्या इज्जतें और हम क्या लोग हैं, हम तो कुछ कुछ ही काबिल भी नहीं है, लेकिन हमें कितना बुरा लगता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी बात कह रहे हैं, आपको कोई कह दे ये पागल ही है, मजनून, ये तो जुनूनी सी औरत है, कैसा लगता है। जरा अपने ऊपर रख के तो देखें। हाँ तो पैगंबरों ने ये बातें सुनी है, उन्होंने सुनी है, लेकिन उनकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आया। आज कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन लोगों ने क्या कहा, इसलिए कि उनको इज्जत अल्लाह ने दी है। और जिसको अल्लाह इज्जत दे दे ना, रहती दुनिया तक उसके लिए इज्जत ही इज्जत है। ठीक है, तो लोगों की नजरों में इज्जत ना तलाश करें। हम सोचते हैं आए फलां अगर मैंने ये कर लिया ना लोग क्या कहेंगे, तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी फिर, अगर मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ये पहन लिया, मेरी कहाँ इज्जत रहनी है फिर। इसलिए आप ये सोचते हैं क्योंकि आपको ये यकीन नहीं है कि वह तो इस सुमंतशाओ इस पे यकीन कर ले। अल्लाह अकबर, या अल्लाह ये यकीन हमें अता फरमा दे, हमारे दिलों में रासिक कर दे या अल्लाह।